ఓం శాంతి. దేఖ రా హూ కుంభ మేలే కి యే అంతిమ టుబ్కీ హై. ఇత్నీ సంఖ్యా మే భాయి బహనే ఇకట్ఠే హువే హై, ఉస్మే భీ విశేష మహారాష్ట్ర జోన్. లేకిన్ సబ్ తరఫ్ సే భాయి బహనే ఆయే హువే హై, తో ఆప్ సభీ కా స్వాగత హై, అభినందన్ హై. ఆజ్ కా దిన్ బహుత్ అచ్చా హై, స్టార్టింగ్ కితనీ అచ్చీ హుయీ హై. ఆజ్ సవేరే కిస్నే మురళీ సునాయి? అస్సీ సాల్ సే జో ఇస్ ఈశ్వరీ విశ్వవిద్యాలయ మే ఆజ్ సే లేకర్ జిన్కా జీవన బీతా, और स्वयं अभी 101 साल की हैं, ऐसी हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी स्वयं आपके सामने आए और मुरली सुनाए, इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य हो सकता है. भले ये लास्ट टुबकी है, लेकिन आप सब अपने सौभाग्य को जरा गिनती करते जाना कि क्या क्या आपको प्राप्ति है इसमें. सबसे पहले तो इतना बड़ा ईश्वरी परिवार इकट्ठा हो साथ में, यही बहुत बड़ी बात है. यहां से आके कोई देखे तो सारा हाल भरा हुआ है. यहां पर जितने बैठे हैं इतने ही मेरे ख्याल में बाहर भी होंगे. कोई लिटरेचर खरीद रहा है, कोई प्रकाश स्तंभ पे जाके थोड़ा विशेष मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई अभी पहुंच रहे हैं. सब परवानों को आकर्षण करने वाला कौन है? स्वयं क्षमा है. ऐसी शक्तिशाली क्षमा जो देश विदेश के परवानों को सबको मधुबन तक खींच लाती है. आप सभी विशेष भारत तथा नेपाल के भाई बहने यहां बैठे हैं, लेकिन विदेश के भाई बहने भी 500 के करीब ऊपर ज्ञान सरोवर में ठहरे हुए हैं. वो शाम को आपके साथ इधर आके बैठेंगे. और यहां से जब हम बात करते हैं तो सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, टेलीविजन के द्वारा देश विदेश में सब भाई बहने सुन रहे हैं. तो जो भी सुन रहे हैं सबको आज विशेष इस सीजन का ये जो अंतिम मिलन है, संगठन है, उसकी मुबारक दे रहे हैं. आज के लिए जो मुझे बताया गया कि अव्यक्त मिलन से जो हम सबको फायदा होता है, जो हम सबका उत्थान होता है, जिससे कि हम आत्मों की जीवन इतनी श्रेष्ठ बनती है, तो उसके एवज में हम रिटर्न क्या दें? तो प्रश्न उठता है, रिटर्न देना किसको है? किसको देना है? बाबा को तो रिटर्न नहीं चाहिए. बाबा का तो ऐसा सेवा का पार्ट है. बाबा कहता है मुझे आप बच्चों से कुछ नहीं चाहिए. बाप बेहद का बाप है और सदा देने वाला है। और क्या देने वाला है, दो शब्दों में बताइए। जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है, स्वर्ग की बादशाही देने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके पहले स्वर्ग के योग्य बनाने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ बात है, ईश्वरीय ज्ञान धन दे रहा है। बाबा के मां वाक्यों को सामने रखते हैं तो बच्चे, ये जो ज्ञान की मुरली आप सुनते हैं उसको अगर उस ध्यान से सुने तो ईश्वरीय ज्ञान के एक एक वाक्य लाखों रुपए के हैं। इतनी उसकी वैल्यू है बाबा के दिल में। अब बच्चों के दिल में कितनी है ये तो बच्चे खुद जाने। आप क्या समझते हो, जो समझते हैं सचमुच लाखों रुपया हमारा रोज का इकट्ठा हो रहा है लेकिन सूक्ष्म बैंक में हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगती है, टैक्स फ्री है बिल्कुल। आपके मन में वो बैंक है, बाहर नहीं है कहीं। जितना बाबा को मनमना भव होकर के याद करते हैं और उनके महावाक्यों को थोड़ा रिवाइज करते हैं, अपने मन में चिंतन करते हैं, उसको फिर प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, कदम कदम पे उसको अगर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या जीवन बन जाती है। बहुत पढ़ाई पढ़ने पर भी ऐसी जीवन नहीं बनती है, लेकिन ये पढ़ाई सबसे पहले तो यही बात जब सोचते हैं तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, ईश्वरीय ज्ञान कौन देता है, कौन देता है, दादी देती है, ब्रह्मा बाबा देते हैं, कौन देता है, शिव बाबा देते हैं। शिव बाबा की आज की मुरली के अनुसार देखो कि बाकी तो आपको पिता के रूप में अलग मिलते हैं, टीचर के रूप में अलग मिलते हैं, गुरु के रूप में अलग मिलते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के रूप में मिलते हैं। बाप के रूप में क्या करते हैं, वर्षा देते हैं। टीचर के रूप में इतना श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं, दैवी गुणों की ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं जो मनुष्य से देवता बना देते हैं। दिव्य गुण संपन्न बनना छोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है, सारी दुनिया उसमें भिन्न भिन्न तरीके से खोज में ही लगी रहती है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का अपना। हालांकि हम स्वयं हैं, हम आत्मा हैं, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन छोटी आत्मा शरीर मोटे में रहने के कारण वो अपने आप को भूल जाती है। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो शुरू में मोह मंडली में बाबा ने पक्का कराया था, लिखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लिखो, जितनी बार लिखेंगे उतना पक्का होगा। सोल कॉन्शियसनेस माना आत्म स्मृति का स्वरूप बन जाएं, हर समय अपने आप को आत्मा निश्चय करके चलें, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक दो को देखें, आत्मिक भाव से एक दो के प्रति भावना रखें, आप सोचिए क्या जीवन बन जाएगी उससे। इतना श्रेष्ठ जीवन बनाने के निमित्त स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान दे। थोड़ा सोचिए गहराई से कि परमात्मा खुद ज्ञान दे कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई स्कूल का टीचर नहीं, कोई संत महात्मा भी नहीं, लेकिन वो पिता जिसको इन आंखों से भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखते हैं ऐसा नहीं है, दिव्य दृष्टि से भी देखते हैं, दिव्य चक्षु से भी देखते हैं, दिव्य बुद्धि से भी पहचानते हैं। तो ऐसे पिता के साथ जब उन्होंने ज्ञान दिया है, समझा है, तो सभी का उनसे कितने परसेंट, मैं अभी परसेंटेज पूछ रहा हूं, कितने परसेंट उनको स्वीकार किया है? जिन्होंने 100% स्वीकार किया जरा हाथ खड़ा करें। कोई कोई अभी सोच रहे हैं। फिर से पूछ रहा हूं, ये ज्ञान कौन दे रहा है? मुरली कौन सुनाता है? शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा भी सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं, दोनों सुनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे पहचानना कैसे है कि जो डायरेक्ट ज्ञान की बातें, गहराई की बातें वो शिव बाबा सिखाते हैं, फिर उसमें कई अनुभव की बातें होती हैं, बाबा अनुभव भी साथ में, तो अनुभव कौन सुनाता है? वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। इसलिए बाप दादा की मुरली कहा जाता है। तो ऐसी मुरली कल्प में एक ही बार सुनते हैं आप, सत्युग में सुनेंगे नहीं, त्रेता में सत्युग में मुरली नहीं सुनेंगे, श्री कृष्ण मुरली सुनाएगा तो नहीं सुनेंगे। श्री कृष्ण की मुरली अलग है, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली बजाने वाला वो बनता कैसे है? उसको बनाने वाला शिव बाबा है, जो ज्ञान की मुरली सुना के बनाता है। क्योंकि श्री कृष्ण का स्वरूप जो है, एक तरफ कहते हैं बहुत मोहिनी मूरत है, लेकिन साथ साथ फिर उनके लिए इतने ऊंचे गुण का गायन है कि सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। आप सोचो, एक एक बात को ले लो आप, कितनी ऊंची पढ़ाई होगी जो वो आत्मा इतना ऊंचा बनी जाकर। तो कब पढ़ाई थी? सत्युग में तो बाबा कहता है वहां तो ये पढ़ाई होगी नहीं, वहां तो प्रारब्ध भोगेंगे। पढ़ाई किस समय पढ़ी थी? संगम युग में। उसको बाबा ने नाम दिया पुरुषोत्तम संगम युग। कभी है पुरुषोत्तम संगम युग? अभी चल रहा है, अभी है, अभी है। फिर से पूछ रहा हूं, आप उस युग में हैं? पक्का? तो सबसे तो भाग्यशाली कौन हुए फिर, जो डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं हैं, वो ही सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। सात सौ आठ सौ करोड़ में से कितने भाई बहने ये पढ़ाई डायरेक्ट पढ़ते हैं? बहुत थोड़े हैं, लाखों में है, करोड़ों में भी नहीं है। और उन लाखों में भी, अब सोचने की बात है, उन लाखों में भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ने वाले कौन है, कितने हैं? आप कहां बैठे हैं? कहां बैठे? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी का हाल कितना बड़ा है। तो आप सोचिए कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे बाप इतना महान बड़ा है, सबसे बड़ा बाप है, तो उसकी पढ़ाई भी बहुत बड़ी है। 80 साल से लगातार ज्ञान मिल रहा है, आप सोचिए, एक दिन नहीं मिस किया बाबा ने, एक दिन भी मिस नहीं किया। और पढ़ाई पढ़ते 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 देवताओं से पहले फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता स्वरूप जैसी हमारी दादियों को आप देखते हो, देखने में आती है ना। जानकी दादी को देखते तो क्या नजर आता है, हाँ? गुलजार दादी को देखते हैं तो क्या देखते हैं, भावना तो वो होती है दादी बाबा, दादी बाबा यही देखते हैं ना। क्योंकि उसको बच्चे छोटे जो है ना वो क्या कहते हैं, ये बाबा वाली दादी है, रत्नमयनी दादी, ज्ञान रत्नों से भरपूर, इतने ज्ञान की बातें सुनाएगी जो बात मत पूछो। सभी बहने भाई जो भी सीनियर भी हैं, सभी एक से एक बढ़कर के अनुभवी हैं। लेकिन उन सब के अनुभव का आधार क्या है? आधार है कि हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो जिनका पिता भी परमात्मा है, जिनका टीचर भी परमात्मा है, और फिर अपने साथ सबको पावन बना करके परमधाम ले चलने वाला है, वो भी परम पिता परमात्मा। तो इस बातों को जब अच्छी गहराई से सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं है, ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं है ये। बाबा जो कहता है कि ये एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, वो सच्ची बात है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए कोई, जब तक ये ईश्वरी ज्ञान नहीं है तो उसकी पढ़ाई जैसे आधी अधूरी है। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े स्कॉलर यहां आकर के देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहां पर प्रोग्राम हुआ, सभी जानते हैं ना, टीवी पर तो सबने देखा होगा। कितने भाई बहने आए, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, लेकिन फिर यहां आने के बाद एक बात सबके मुख पर आती थी, यहां आने से शांति का जो अनुभव होता है वो और कहीं नहीं होता है। शांति वन का नाम ऐसी शांति वन नहीं है, लेकिन इसके वाइब्रेशन प्रकंपन जो है उसके अंदर वो बड़ी शक्तिशाली वो भासना आती है, फीलिंग आती है। बिल्कुल नए व्यक्ति, एक बार भी पहले सेंटर पे नहीं गए हुए, लेकिन नामी ग्रामियां दुनिया के अंदर, यहां आने के बाद स्टेज पर उनका स्वागत वगैरह किया गया था, उनके मुख से ये अपने आप निकल रहा था। किसी ने कोई लिख के नहीं दिया उनको, कोई ये नहीं कहा कि आप बोलिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने दिल से वो सारी बात बोल रहे थे। तो आप सोचिए कि वो तो आए एक दिन, क्या कहते हैं, चरणामृत लेके चले गए थोड़ा सा, लेकिन आप मालिक होकर के बैठ के सारा ज्ञान सुनते हैं। क्योंकि बाबा के पास जो भी बच्चे आते हैं वो मालिक है, पहले दिन से मालिक है। दादी जी से किसी ने पूछा था, मैं पहले भी एक आधी बार सुनाया है, दादी जी से पूछा आपके फॉलोअर कितने हैं, प्रकाशमणि दादी से पूछा था, तो दादी ने कहा यहां एक भी फॉलोअर नहीं है, एक भी फॉलोअर नहीं है। क्योंकि पूछने वाले एक महामंडलेश्वर थे, वो कहने लगे आपका एक भी फॉलोअर नहीं, ऐसे कैसे होगा, इतना बड़ा आपका ये सारा सेटअप है यहां। दादी ने कहा यहां सब मेरे भाई और बहने हैं, फॉलोअर नहीं है, सब मेरे बाबा के बच्चे हैं और सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। इनके हर एक के नैनों से, हर एक के मस्तक से बाबा की रोशनी सबको नजर आती है, बाबा की दृष्टि नजर आती है। इसलिए ये मेरे भाई बहने हैं, फॉलोअर कोई नहीं है। तो इसी तरह से जब हम थोड़ा सा ज्ञान की तरफ मन लगाते हैं, बाबा की तरफ मन लगाते हैं, मुरली की तरफ मन लगाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि बाकी दुनिया की बातों से मन हट जाता है। क्यों, आत्मा को क्या चाहिए, थोड़ा सोचने की बात है। सारे जीवन में हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, बाकी सारी लौकिक दुनिया की बातें करते हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए, सुख के लिए कर रहे हैं। और फिर शांति नहीं होती तो यात्राएं करते हैं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, यात्राएं करके करके फिर थक जाते हैं। तो बाबा ने सारी बातों का ऐसा सार बता दिया कि जहां भी आप रहें, जैसे भी चलें, सदा यात्रा पर रहें। उस यात्रा का नाम क्या है? याद की यात्रा। मन को बाबा के साथ लगा के रहें, शिव बाबा को अपने दिल में बिठा लें, शिव बाबा को अपने मन में बिठा लें, शिव बाबा के इतने समीप। ऐसे ही भक्त लोग नहीं कहते कि भगवान हमारे दिल में है, फिर भी उसको ढूंढते रहते हैं, यात्राएं करते रहते हैं। उसका कारण क्या? मन उनके साथ लगता नहीं है। क्यों? कि शिव बाबा का यथार्थ परिचय उनको नहीं है। बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है, जब तक मैं स्वयं आऊं नहीं धरा पर, स्वयं बताऊं नहीं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां रहता हूं, कैसे आप जानेंगे कि मेरा परिचय क्या है? मेरे बच्चे ही मेरा परिचय जान पाते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। और उन बच्चों में भी फिर बाबा कहता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पहला नंबर कौन लेना चाहेगा? हाथ खड़ा करो, सभी करेंगे। अच्छी बात है। और वास्तव में हर एक अपना पहला नंबर लेता है, ये भी आपको मालूम होगा। आप अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति को इमर्ज करो थोड़ा। एक बार साकार बाबा के साथ कुछ बातचीत हो रही थी, अपना अनुभव सुना रहा हूं मैं। अब नए नए थे तो बाबा ने उस समय कुछ, हम छोटी मोटी कोई सेवा करके आए थे, बाबा ने बहुत प्यार से थोड़ा वाह वाह कर दी, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे ने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा, बाबा हमने बहुत छोटी सी बात की है, इतना कुछ किया नहीं है, और हम इतना अभी कहां, अभी तो आए हैं, सीख रहे हैं। बाबा हमें किस दृष्टि से देखते हैं, वो वंडरफुल बात थी उस समय नोट करने की। बाबा ने कहा, बच्चे आप अपने वर्तमान को देख रहे हो, बाबा आपके फाइनल स्टेज को देख करके बोल रहा है। तो बाबा का हर एक बच्चा फाइनली क्या बनेगा? मनुष्य से देवता बन जाएगा। बस तो देवता बहुत ऊंची स्थिति की निशानी है, पूजनीय है, दर्शनीय है, वंदनीय है, ऐसी स्थिति तक पहुंचा देता है बाबा। और उसके लिए मेहनत क्या कराता है, कहता आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं बड़े बड़े तीर्थों पर या तो बड़े मेले मलाखड़ों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप अपनी सेवा में हैं, वहां रहते हुए कारोबार करते हुए आपका मन तो फ्री रहता है ना कि नहीं? सारा दिन मन लगा हुआ है कोई बातों में, ऐसा तो नहीं है, बल्कि ऐसा है कि लौकिक दुनिया में जैसे आप सब अनुभवी हैं, जब कोई कामकाज नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं, इधर की बात, उधर की बात, उसकी बात, इसकी बात, जिससे कोई किसी को लाभ नहीं होता है। जब से बाबा मिला, बाबा ने कहा बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग ये बहुत वैल्यूएबल है, इसका एक एक सेकंड आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर एक सेकंड आपने गंवा दिया, माना कई वर्षों का अपना पुरुषार्थ आपका कम हो जाएगा। एक एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हैं, इसको आप पक्का करिए, इसको गंवाइए नहीं। संगम युग के एक एक सेकंड की वैल्यू अपने पास रहनी चाहिए। और उसको सफल करने का क्या तरीका है, एक एक सेकंड सफल कैसे करें, उसके लिए दो ही बातें हैं। एक है मन मना भव, बाबा कहता मन मेरे साथ लगाओ तो बाप समान बनते जाएंगे। और दूसरा, बाबा ने कहा जैसे बाप बच्चों की सेवा के लिए उपस्थित है, अब बच्चे जो हैं अपने भाई बहनों की सेवा में उपस्थित हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए, सबकी सेवा, उसका लक्ष्य अगर मन में रहे। उसमें सबसे बड़ी बात बाबा कहता है, आप एक एग्जाम्पल बन करके सेवा करते हो। दुनिया के अंदर जैसे कोई शोरूम में जाता है तो शोरूम में पहले तो वो कोई मॉडल बना हुआ देखते हैं, अच्छे से अच्छा पीस देखते हैं, उसको देख करके वैसी चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज अगर किसी को कहना हो कि भाई भगवान आके पढ़ा रहा है और पढ़ा करके हमको देवता बना रहा है, तो उनको निश्चय कैसे होगा? कैसे होगा निश्चय? तभी होगा जब हमारी चाल चलन ऐसी हो, हमारी वाणी ऐसी मीठी हो, हमारी दृष्टि ऐसी ऊंची हो, तब वो हो सकता है। और उसके लिए बाबा ने ये नशा चढ़ाया है कि बच्चे आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चे, क्योंकि भगवान खुद आपको देता है, किसके लिए? दाता के बच्चे हैं दूसरों की सेवा करने के लिए। उसके लिए आप अपने आप को जरा समर्पित करो, जितना टाइम मिल जाए, तो एक तरफ याद, दूसरी तरफ सेवा। याद और सेवा, इस दोनों का बैलेंस जिसने रखा, आप मानो कि उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, उनका प्लेन बहुत ऊंचाई तक जाएगा, उनकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। बहुत सहज बात है। और उसके लिए और कुछ मेहनत ना करो। सवेरे जब भी उठते हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप 2 बजे उठो, 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो, 3:30 उठो, अमृत वेला 4 से 5, बाबा ने हुक्म दिया होगा, मास्टर का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना, टीचर का तो, कि नहीं? बहुत देरी तक कामकाज करते हैं, देर से सोते हैं, इसलिए अमृत वेले नहीं उठ सकते, क्या कहेंगे फिर? फिर कोई कोई सुस्ती करते हैं, समझते हैं अच्छा ठीक है दुनिया में किसी किसी जगह पर तो इस समय अमृत वेला है ना, हम उसके हिसाब से योग कर लेते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन नहीं, एक हफ्ता लगातार आप उठेंगे 4 बजे, 4:15 4 बजे, और बाबा को याद करेंगे तो उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो संस्कार बन जाता है। फिर आप सोना भी चाहेंगे, कभी सो नहीं पाएंगे, ये भी बता दूं, क्योंकि आपको पक्का है कि इस समय बाबा हम बच्चों को फिर से शक्ति देता है, शक्तिशाली बनाता है, मैग्नेटाइज करता है, मैग्नीफाई करता है, दोनों बातें हैं उसमें। और जितना जितना बाबा के साथ उस समय योग लगाते हैं तो अपने लिए सिर्फ नहीं होता है, ये तो बाबा ने बहुत अच्छी बातें मुर्गियों के अंदर सुनाई है कि आप जिस समय बाबा की याद में बैठते हैं तो आपके वाइब्रेशन सारे विश्व को शांति का दान देते हैं। आप सोचिए क्या टाइटल हो गया आपका, हाँ? लोग पीस प्राइज देते हैं ना किसी किसी को, कहीं लड़ाई बंद करा दी या कहीं कुछ और कर दिया तो उनको पीस प्राइज देते हैं, तो आपको कौन सा प्राइज मिलता है, हाँ? विश्व शांति स्थापक बन गए आप, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। तो विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त दूसरा कोई नहीं है, शांति के सागर बाप के हम बच्चे हैं और विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, ये भी नहीं कि करेंगे, कर रहे हैं रेगुलर अपने मन में बाबा को ला करके, ये प्रकंपन सारी दुनिया को दे रहे हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ अमृत वेले, जितना समय हम साइलेंस में रहेंगे, जितना समय अपने मन को पीसफुल रखेंगे तो वो हमारे प्रकंपन दुनिया में जाते रहेंगे। विश्व में शांति स्थापन करना किसका काम है, विश्व में शांति स्थापक करता कौन है, कौन है? हम पीछे हाथ उठा रहे हैं कि हम हैं, आगे वाले अभी सोच रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपने अंदर शांति हो, मन के अंदर बाबा की याद और प्यार हो, तो क्या होगा, मन मना भव होने से मन खुश हो जाएगा। सिर्फ मन की शांति नहीं लेकिन मन खुश भी होगा, खुशनुमा रहेंगे हमेशा अपने जीवन में, सदा मुस्कुराते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज के युग में अधिकतर लोग अखबारों को देखते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी की न्यूज देखो, उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलेगी, मोस्टली नेगेटिव, सभी जानते हैं। अगर अखबार वालों से पूछो तो कहेंगे अगर पॉजिटिव देंगे तो कोई छापेगा नहीं, पढ़ेंगे नहीं कोई। तो आप सोचिए कि जो खाना हमें सूट नहीं करता, हमारे मन को जो चीज सूट नहीं करती है, और वो हम उसी को अध्ययन करते रहें, उसी को पढ़ते रहें, उसी के सीन देखते रहें, तो उससे पीस ऑफ माइंड रहेगा, मन में शांति रहेगी, आनंद रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए बाबा ने बच्चों के द्वारा पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू कराई, इसीलिए कि पॉजिटिव बातें सारी उसके अंदर जाए, जितनी पॉजिटिव बातें जाएंगी उतना व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है कि वास्तव में ये जो कहावत है, परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में घड़ा, तो परमात्मा का स्वरूप तो नेगेटिव नहीं है, उनका स्वरूप तो पॉजिटिव है। वो तो ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, सब चीजों में ओशन है, समुंदर है। तो समुंदर के बच्चे क्या होंगे, क्या होंगे? समुंदर के बच्चे दरियाई होंगे ना। दरिया कहां से निकलते हैं? समुंदर से पानी आता है, पहाड़ों पे गिरता है, उससे दरिया बनता है। तो बाबा है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। किसके लिए, किसके लिए है? हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। बाबा ये नहीं कहता मेरे भगत बन के चलो, क्या कहता है? आप बच्चे मेरे गले के हार, मेरे नैनों के नूर हो। ये शब्द इतने अच्छे बाबा के हैं। तो आप सोचिए, आप किसके नैनों में रहते हैं, किसके नैनों में रहते हैं? और आपके नैनों में कौन रहता है? एक दो के नैनों में बस देखते ही रहते हैं। तो कितना अच्छा है अगर ऐसी स्थिति बन जाए, तो दुनिया में हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को अपने नैनों में समा लिया, और फिर भगवान की जो श्रीमत है, उस श्रीमत को पहचान लिया, उसके अनुसार अपने जीवन में श्रेष्ठता ले आए, जीवन ऐसी बन गई, श्रेष्ठ जीवन बन गई, तो और क्या करना है? और उसका फिर आज की जैसे मुझे कहा गया है, उसका रिटर्न क्या देना है? बाबा ने इतनी पालना हम बच्चों की है, तो हमारा फर्ज है। करोड़ों भाई बहने हमारे हैं दुनिया के अंदर जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो यथार्थ उनकी जीवन भी नहीं रहती है। उनको थोड़ा थोड़ा किसी तरीके से उनको परिचय मिले, उसके हम निमित्त बनते रहे। लौकिक में भी अगर कोई अच्छी जगह होती है, तो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को कहते हैं ये बहुत अच्छी जगह, चलो वहां। कोई अच्छी, हाँ, दुनिया के अंदर तो अच्छी कोई फिल्म आई तो कहेंगे ये फिल्म बहुत अच्छी है, देखो। आजकल तो आप जानते हो क्या है। लेकिन परमात्मा का रास्ता दिखाना किसी को, परमात्मा की याद दिलाना, परमात्मा से किसी को वर्षा दिलाना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। कदम कदम पे हम पुण्य का काम कर सकते हैं, अगर अपने पास दिल में ये एक लक्ष्य रखा जाए कि मुझे क्या करना है। सिर्फ मैं अकेला ही बाबा को याद करता रहूं, जैसे संत महात्माएं अपनी अपनी गुफा में बैठ के करते रहते हैं, फिर कोई भूला भटका उनके पास चला गया तो थोड़ा उनको कुछ शांति का दान दे देते हैं। लेकिन दुनिया तो सारी अशांति में है, चारों तरफ अशांति, नींद के समय भी कई बार अशांति, स्वप्न में भी कई आवाज भी करते हैं, डरते भी हैं, डर के कारण उठ भी जाते हैं, फिर नींद नहीं आती है। लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते ही क्या कहते हैं बाबा को? बाबा गुड मॉर्निंग। गॉड से गुड मॉर्निंग करना माना क्या बात है, गुड ही गुड हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे कोई सामने मिलेगा, मुस्कुराते हुए आपको देख के आप उनसे भी गुड मॉर्निंग करेंगे, प्यार से बात करेंगे, उनको लगेगा ये इस दुनिया के लोग नहीं हैं, ये कहीं और से आए हुए हैं। जैसे आजकल है ना फिल्में बनती हैं, कोई दूसरी दुनिया के आए हुए जीव यहाँ आते हैं फिर वापस जाते हैं, ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं। वो एक प्रकार से इशारे मिल रहे हैं कि हमें अपना पता होना चाहिए कि हम परम धाम से आए हुए हैं। परम धाम से आए तो सतयुग में आए थे, कलयुग में नहीं आए थे, बहुत सुखी भी थे और ऐसा सुख का जीवन पाया हुआ है, इसलिए आज दिन तक भारत में खासकर ये प्रथा है, जब कोई शरीर छोड़ता है, अखबार के अंदर भी लिखते हैं, वैसे मुख से भी कहते हैं, वो स्वर्ग पधारा। कोई सिधारा कहता है, कोई पधारा कहता है, स्वर्ग पधारा। यानी इतनी ऊंची बात है, तो हम पहले थे ही स्वर्ग में। परमात्मा ने हमें कौन सा वर्षा दिया था, कौन सा वर्षा दिया था, कितने जन्म का, 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी थे, 2500 साल के लिए स्वर्गवासी थे। ये कुछ छोटी बात नहीं है। एक जन्म के लिए भी कोई अच्छी जीवन में आ जाता है तो उसकी वाह वाह होती है, और आपकी कितनी वाह वाह होती है। दुनिया के कोने कोने में आपके मंदिर बने हुए हैं, राजा महाराजा भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को पूजते हैं, राधे कृष्ण को पूजते हैं। ऐसी ऊंची जीवन बन जाए, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लें, उसका रिटर्न हम क्या देंगे बाबा को, बाबा हम आप समान दूसरों को भी बनाएंगे। ठीक है ना, आज की इस क्लास में बाबा से क्या वायदा करेंगे कि जैसे बाबा आपने हमें इस योग्य बनाया है, हम अन्य भाई बहनों को भी आप समान बनाएंगे ताकि वो भी आपसे अपने वर्षे का हक ले सकें। ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि नहीं तो क्या कहा जाएगा, अरे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भी बहुत स्वार्थी हैं, खुद स्वर्ग के मालिक बनते हैं, दूसरे किसी की चिंता ही नहीं है इनको। तो हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन उनके लिए कुछ चिंतन जरूर करना है, क्योंकि किसी को अगर ऐसी मुफ्त में कोई चीज देते हैं तो लोग सोचते हैं ये क्यों दे रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत है। लेकिन फिर उनको पहले तो रियलाइज कराना पड़ता है कि भाई आप सोचो, आपके पास ये चीज नहीं है, इसके कारण आप अपने जीवन में जो सुख शांति होनी चाहिए वो नहीं ले रहे हो। तो ऐसे ऐसे थोड़ा बुद्धि चलाते रहेंगे कि किसी के निमित्त बनने के लिए। और उसमें देखा गया है कि जब किसी को सामने देखते हैं, बाबा की याद में देखेंगे, तो बाबा उस समय टच करता है कि इनके लिए आपके पास ज्ञान में से कौन सी ऐसी बात है जो इनको देनी चाहिए। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, बाबा ने जब से मुरली शुरू की है कितने धर्म ग्रंथ बन सकते हैं उसके सब। मैं तो अभी पिछले 5 साल की जो मुरलियां हैं वो इकट्ठी करवाई, इकट्ठी होती है सेंटरों पर। एक बहन ने पूछा कि भाई साहब ये मुरलियों का क्या करूं मैं, 5 साल की मुरलियां मेरे पास इकट्ठी है। मैंने कहा इनको 3-3 महीने की मुरली बाइंडिंग करवा दो और मेरे पास भेज दो, हम इससे बहुत कुछ करेंगे, रिसर्च करवाएंगे इसके ऊपर। तो इतनी ढेर सारी वो किताबें बन के आ गई हैं, किसी को रिसर्च करनी हो तो बताए मेरे को, तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो लक्ष्य क्या रखा है, एक थोड़ी सी बात आपको सुना दें कि जब साकार बाबा के सामने मुरली चलती थी तो हमारे एक दिल्ली के भाई हैं कवि जी, कवि देवीचंद, वो उसी टाइम बाबा के सामने मुरली पूरी होता ही होते उसकी कविता बना करके बाबा के पास बैठ करके और वो कविता सुना देते थे। तो मुझे याद आया कि अगर मुरलियां कविता के रूप में अगर बनाई जाएं तो सभी रुचि से पढ़ेंगे, नहीं तो एक बड़ी लंबी चौड़ी मुरली होती है तो पढ़ पढ़ करके थक जाते हैं। लेकिन कविता होगी तो उससे गीत बनाएंगे, कविता बनाएंगे, बच्चे भी उसको याद कर लेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। करें ऐसे? तो बाबा के महावाक्यों की वैल्यू जितनी आपके दिल में रहेगी, जितना आप उसको प्यार से स्वीकार करते रहेंगे और उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं उसको अपने जीवन में ट्रांसलेट कर दीजिए। बाबा कहता था ये आपके रोम रोम में ज्ञान की बातें चली जानी चाहिए। हमारा शरीर सारा पांच तत्वों का पुराना बना हुआ है, इसके रोम रोम में ज्ञान और योग की बात चली जाए तो देवताओं जैसे अभी ही बन जाएंगे, कल की बात तो कल से ही। देवताएं भी तो मनुष्य हैं, दूसरे तो कोई नहीं है ना, लेकिन वो पावन हैं, श्रेष्ठ हैं, दिव्य गुण संपन्न हैं। तो अगर ये लक्ष्य रखें कि हमें ऐसा देवता अभी से बनना है, कल से नहीं, कल पर नहीं छोड़ना, कल कल करते क्या कहते हैं काल खा जाएगा। काल क्या होता है? काल और कोई खाता नहीं है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, बाद में पश्चाताप होता है, अरे मैं ये कर लेता तो कितना अच्छा था, थोड़ा और अभ्यास कर लेता तो कितना अच्छा था, समय पर उठ जाता सुबह तो कितना अच्छा था, मुरली रोज पढ़ लेता सुन लेता तो कितना अच्छा था, बाद में पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप की घड़ी ना आए अपने लिए, ठीक है ना, पश्चाताप की घड़ी ना आए, खुशी खुशी बाबा के सन्मुख जाएं ताकि बाबा हमें अपनी राजधानी में भेज दे। ये है अंतिम समय का बाबा को रिटर्न देना। ओके, ओम शांति। अभी 10 मिनट और हैं, क्या करेंगे? थोड़ा बाबा के साथ मन लगाएंगे, चलेंगे। कौन सा गीत चाहिए? उड़ के चलने चले जाएं बस। देखो संकल्प से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है, और बाबा ने भी संकल्प से ही कहा है कि आप संकल्प करो हम शुद्ध आत्मा हैं, ज्योति स्वरूप हैं, बाबा भी ज्योति स्वरूप है, बाबा का और हम आत्माओं का बच्चों का जो निवास स्थान है वो सूर्य चांद तारागण से भी पार, ब्रह्मलोक जिसको कहते परम धाम भी कहते हैं, जहां से हम सब आत्माएं इस धरा पर आए हैं। तो बाबा के साथ अपने स्वीट होम में, परम धाम को बाबा कहते थे स्वीट होम ऑफ साइलेंस, वहां पर मन को ले चलें, बिल्कुल पीसफुल होकर के बैठें और बाबा को दिल ही दिल में प्यार से थैंक्स देते रहें कि बाबा आपने हम बच्चों को कहां कहां से ढूंढ करके अपना बनाया है और हमें इस योग्य बना रहे हैं कि आज हम आपके संग में हैं और फिर आप हमें देवलोक, प्रैक्टिकली देवलोक, जो देवताओं की दुनिया है, सत्युगी दुनिया, उसमें प्रिंस प्रिंसेस बना के भेज देंगे। तो हम दिल से बाबा को थैंक्स भी देते हैं। वैसे बाबा कहता थैंक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन थैंकलेस भी तो नहीं बनना है। इसलिए बाबा को दिल ही दिल में, बाबा थैंक यू आपके पास आ गए और अब आपके संग के रंग में रंग जाएंगे। ओम शांति। अभी थोड़ा गीत वीत सुनना और बाबा के पास मन को लगा के खूब अच्छी तरह से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना।